ये आकाशवाणी दिल्ली है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। भारत और मालदीव के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ मोबाइल वैन के माध्यम से 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर टमाटर बेचेगी। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि देश में 100 खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। दिल्ली सरकार के एंटी डस्ट अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कई परियोजना स्थलों का औचक निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गिनती की शुरुआत डाक मतपत्रों से होगी। दिव्यांगजनों, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों और अति आवश्यक सरकारी कर्मचारियों ने डाक मतपत्रों में मतदान किया है। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से डाले गए वोटों की गिनती होगी। मतदान केंद्रों से शुरुआती रुझान दोपहर तक आने की उम्मीद है। हरियाणा में शनिवार को 67.9% मतदान हुआ था। जहां सत्तारूढ़ भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस एक दशक के लंबे अंतराल के बाद वापसी की कोशिश कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन और जननायक जनता पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन को भी उम्मीद है कि वे अच्छी टक्कर देंगे। अनुपम मिश्र, प्रादेशिक समाचार, रोहतक, हरियाणा।
अब बात करते हैं हमारे संवाददाता सकलीन अख्तर से, जो रेवाड़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सकलीन, मतगणना को लेकर कैसी तैयारियां हैं वहां पर?
आकर्षिता, हम रेवाड़ी जिले में मौजूद हैं और मतगणना को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से कराने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरों से नजर भी रखी जाएगी। और अगर हम रेवाड़ी जिले की बात करें तो इसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं, रेवाड़ी, कोसली और बावल। रेवाड़ी और बावल विधानसभा सीट के लिए सेक्टर 18 में गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज में एक मतगणना केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं कोसली सीट के लिए जैन बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक अन्य केंद्र में मतगणना होगी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और पहले डाक मतपत्र के वोट गिने जाएंगे। कल जैसे ही गिनती शुरू होगी हम अपने श्रोताओं के साथ गिनती के अपडेट साझा करेंगे। आकर्षिता,
जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फरीदाबाद जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला आयुक्त विक्रम सिंह ने आज कहा कि कल होने वाली मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि जिले की सभी 6 विधानसभाओं के 1650 बूथ में मतगणना होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना के सुचारू संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी जिला मुख्यालय जहां मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य सशस्त्र पुलिस बल और जिला पुलिस 3 स्तरों पर तैनात रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़ू के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग सहित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मालदीव की आवश्यकता के अनुसार 40 करोड़ डॉलर और 3000 करोड़ रुपए का मुद्रा विनिमय समझौता भी किया गया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा मालदीव के लिए प्रथम संकट मोचक की भूमिका निभाई है।
हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कम्युनिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है।
श्री मोदी ने बताया कि मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के खुदरा बाजार में टमाटर के लगातार बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF ने मंडियों से सीधे खरीद कर 65 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर मोबाइल वैन के माध्यम से बिक्री करने की शुरुआत की है। केंद्रीय उपभोक्ता विभाग की सचिव सुश्री निधि खरे ने आज कृषि भवन से टमाटर की बिक्री करने के लिए NCCF की एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
टमाटर के जो बहुत अधिक अप्रत्याशित वृद्धि हुई है मूल्यों में, उसे मॉडरेट करना और उपभोक्ताओं को एक अफोर्डेबल दर पे उन्हें टमाटर की उपलब्धता कराना है और इस इंटरवेंशन के माध्यम से प्राइसेस को कूल ऑफ करने की एक रणनीति है। निश्चित रूप से 3-4 दिनों में ही प्राइसेस कम किए जा सकेंगे और उपभोक्ताओं को इससे बहुत बड़ा रिलीफ होगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय,
जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावी परिणाम
कल 8 अक्टूबर सुबह 9 बजे से,
मतगणना की पल पल की खबर,
हर सीट की सटीक जानकारी,
संवाददाताओं से ताज़ा हाल
और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसीज पर सुनिए
लोक निर्णय।
खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय आने वाले दिनों में 100 खाद्य प्रशिक्षण परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। आज नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित मेस्मराइज के 13वें संस्करण को संबोधित किया उन्होंने। श्री पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के दौरान मूल्यवर्धन सुनिश्चित करते हुए अपशिष्ट को कम करने के लिए 50 विकरण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। श्री पासवान ने खाद्य उद्योग के हितधारकों से भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी बनने में मदद करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय मानकों को भविष्य में वैश्विक मानकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। दिल्ली सरकार के एंटी डस्ट अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज राम मनोहर लोहिया RML अस्पताल और लेडी हार्डिंग्स रोड स्थित रामा सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन और गोदरेज के प्रोजेक्ट स्थल का औचक निरीक्षण किया। श्री राय ने कहा कि निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से संबंधित अनियमितताएं पाई गई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC को दोनों पर 5 लाख के जुर्माने लगाने के निर्देश दिए। साथ ही नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए गए। पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर डस्ट कंट्रोल के 14 नियमों को लागू करना अनिवार्य है, इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाकर उस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में वॉर रूम ने काम करना शुरू कर दिया है तथा पराली को गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव भी शुरू हो गया है। श्री राय ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए 523 टीमें तैनात की गई हैं। डस्ट प्रदूषण को रोकने के लिए 500 वाटर स्प्रिंकलर, 85 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग MRS मशीनों को पूरी दिल्ली में तैनात किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान मिले निवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले को कभी पूर्ण रूप से खाली ही नहीं किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव प्रशांत रंजन झा को लिखी एक पत्र जारी किया। पत्र में श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि सरकारी नियमों के तहत 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले पर आज तक श्री केजरीवाल का कब्जा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ये बंगला आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास के रूप में आरक्षित बंगला नहीं है, बल्कि वो एक सामान्य पूल का बंगला है जिसका अधिकार लोक निर्माण विभाग के पास है। श्री सचदेवा ने कहा कि श्री केजरीवाल को नियमानुसार बंगला खाली करके उसका अधिकार लोक निर्माण विभाग को देना चाहिए था, परंतु उसका नियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव ने वापस ले लिया है। वहीं केवल एक दिन के बाद ही वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने बंगले का आवंटन खुद के लिए मांग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा दिल्ली की सड़कों पर किए गए वादे को एक धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की सड़कों को चुनाव से पहले ठीक करने का वादा करके अपनी असफलता स्वीकार कर ली है। श्री विधूड़ी ने कहा कि श्री केजरीवाल और सुश्री आतिशी ने न्यू रोहतक रोड को दिल्ली की सबसे खराब सड़क माना है, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 10 सालों से दिल्ली की अधिकतर सड़कों का ये हाल हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद LWE प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,000 से घटकर लगभग 7,700 हो गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले साल तक ये संख्या और कम हो जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलिराम भगत की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी श्री भगत को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के पांचवें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की कि माता सुखदायिनी मोक्षदायिनी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आवती कलाया मदिवाया कलाया शीर्षक से एक गरबा गीत भी साझा किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार देश में कृषि प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। नई दिल्ली में आज किसानों और किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कृषि विकास योजना और फसल बीमा योजना जैसे कई फैसले लिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश लंबरदार ने आकाशवाणी को बताया कि श्री चौहान ने किसानों की सभी बातें सुनी और उनका समाधान निकालने का आश्वासन दिया। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 1-1 डिग्री में उनकी बढ़ोतरी की गई है। अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। भारत और मालदीव के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ मोबाइल वैन के माध्यम से 65 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर टमाटर बेचेगी। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि देश में 100 खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। दिल्ली सरकार के एंटी डस्ट अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कई परियोजना स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।